मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का नमस्कार। मित्रों, आज 16 फरवरी 2017 है और आज के इस afeis.com के लाइव मैनेजमेंट में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के भी मेरे इस लाइफ मैनेजमेंट का विषय वही है जो हम लोग पिछले कुछ एपिसोड से लगातार कंटिन्यू कर रहे हैं और वह शीर्षक है बैलेंस इन लाइफ। मैं एक बात बताना चाहूंगा कि आप लोगों की तरफ से इस पर सवाल नहीं आ रहे हैं, समस्याएं नहीं आ रही हैं, आप लोगों के अपने अनुभव इस तरह के भी मुझे ज्यादा पढ़ने को नहीं मिल रहे हैं मित्रों। तो इसलिए अब आज मैं इसे अपना अंतिम एपिसोड घोषित करता हूं, जो कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें मुझे इस बारे में आप लोगों से शेयर करनी है। वे सब बातें मैं आज आप सबके सामने रखना चाहूंगा, लेकिन इसका अर्थ आप ये बिल्कुल न माने कि मैं इसे कहीं भी आधा अधूरा छोड़ रहा हूं। उस आधा अधूरा छोड़ने का सवाल ही नहीं है। प्रतिक्रियाओं का न आना कहीं 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 न कहीं इस बात को भी सिद्ध करता है, या कह लीजिए कि संकेत देता है कि चीजें ठीक ठाक चल रही हैं, समझ में आ रही हैं, या जो भी प्रश्न मन में थे वो प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं। इसीलिए फिर पूछने के लिए ही पूछने का कोई मतलब नहीं होता है। तो मित्रों, हाँ, ये जरूर है कि जब कोई नई समस्या आती है या कोई प्रश्न आता है तो फिर दिमाग उत्तेजित होता है, उन समस्याओं के समाधान खोजने लगता है, प्रश्नों के उत्तर खोजने लगता है, तो फिर उससे एक नई बात निकल कर आती है जिसे मैं लैब कहता हूं। लेबोरेटरी में भी यही होता है, प्रयोगशाला में यही होता है। तो मित्रों, चूंकि अब उनका अभाव है उस तरह के तत्वों का, उस तरह के एलिमेंट का, तो इसलिए आज के इस एपिसोड को मैं बैलेंस इन लाइफ का अंतिम एपिसोड मानकर आपसे कुछ आगे की बातें शेयर करने जा रहा हूं। और आज की मेरी बातों में व्यावहारिक जीवन के कुछ बिंदु होंगे और साथ ही सैद्धांतिक पक्ष के भी कुछ बातें होंगी, लेकिन मैं एक बात आपसे जरूर कहना चाहूंगा फ्रेंड्स, कि नो डाउट की शुरुआत मैंने कुछ सैद्धांतिक पक्षों से की थी, क्योंकि सैद्धांतिक पक्ष को मैं किसी भी विचार के लिए या किसी भी तरीके के लिए एक नींव की तरह मानता हूं। अगर नींव न हो, या अगर हो भी लेकिन अच्छी नींव न हो, तो उस पर विचारों की बहुत अच्छी इमारत खड़ी नहीं की जा सकती, यह मेरा मानना है। तो मैंने कुछ सिद्धांत की भी बातें बताई थी, लेकिन सिद्धांत के साथ साथ मैं लगातार उसके पैरेलल समानांतर व्यवहार की भी बातें करता रहा हूं। तो मित्रों, आप ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा कि सिद्धांत और व्यवहार में कोई जुड़ाव नहीं है या दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों एक दूसरे के संपूरक हैं, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, या यूं कह लीजिए कि एक के बिना दूसरा अधूरा होता है। फ्रेंड्स, कल मैंने कुछ बातें आपसे शेयर की थी, आज मैं उसमें एक दो पॉइंट और जोड़ना चाहूंगा। फ्रेंड्स, खासकर जब आप में अधिक असंतुलन की स्थिति आए, किसी भी वजह से जब बहुत अधिक असंतुलन की स्थिति आती है, तो एक पॉइंट या एक टिप्स कह लीजिए, जो एक सलाह मैं आपको देना चाहूंगा, कि इससे पहले कि आप किसी एक्शन में आए या रिएक्ट करें, या आपको लग रहा है कि आप उसका उत्तर दे रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए रुकें। थोड़ी देर के लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ज्यादा देर के लिए रुकें, भले ही वो थोड़ी देर का रुकना आधे मिनट का ही रुकना क्यों ना हो, 15 सेकेंड का ही रुकना क्यों ना हो, लेकिन ये जरूर है कि आपका ये जो रुकना है ये केवल समयगत रुकना नहीं है। समयगत रुकना नहीं है कहने का मतलब है कि केवल टाइम के हिसाब से आप रुक रहे हैं कि ठीक है, सर ने कहा था कि आधे मिनट रुको या एक मिनट रुको, तो रुक जाते हैं, इसके बाद फिर वही करना है जो हम अभी करने जा रहे हैं, तो रुक जाते हैं। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि चेतनागत रुकाव होना चाहिए। चेतनागत रुकाव का मतलब है कि अब आप जो थोड़ी देर के लिए रुके हैं, चाहे वो 15 सेकंड हो या आधा मिनट हो, उसमें आप विकल्प पर सोच रहे हैं, आप ये विचार कर रहे हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए, बस इसके लिए रुक रहे हैं। यानी कि अपने एक्शन को लागू करने से पहले, अपनी प्रतिक्रिया या उत्तर को व्यक्त करने से पहले, आप उस पर विचार कर रहे हैं कि मैं ये जो करने जा रहा हूं ये ठीक है या नहीं है, या फिर इसकी जगह पर क्या कुछ मैं दूसरा भी कर सकता हूं। तो होगा क्या फ्रेंड्स कि जो आधा एक मिनट का जो वक्त आपको मिला है, इस आधे एक मिनट में आपके अंदर का जो मैकेनिज्म है वो अपने को एडजस्ट कर लेगा। वह एक तरीके से कह लीजिए कि मैक्सिमम जितना भी हो सकता है संतुलन में आने की कोशिश करेगा। देखिए अंदर से अगर आप उसको अलाउ कर देंगे तो वो संतुलन में आना शुरू हो जाता है। जैसे अगर आप पानी को बांध कर न रखें तो वो बहना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वह उसका स्वभाव ही है। तो हम ज्यादा असंतुलन की स्थिति में अपने अंदर नहीं रह सकते, वो संतुलन में आने की कोशिश करता है। अब कितना आ पाता है वो बात अलग है, लेकिन वो आएगा तभी ना जब आप उसको अलाउ करेंगे, उसे मौका देंगे। अगर आप लगातार असंतुलन असंतुलन, एक असंतुलन दूसरा असंतुलन तीसरा असंतुलन, इस तरह के लगातार उस पर प्रहार करते रहेंगे तो वो कभी भी आ ही नहीं सकता उस स्थिति में। तो आप उसे मौका दीजिए, आधा मिनट एक मिनट का आप उसे अवसर दीजिए। आप देखिए कि वो संतुलन में आने की कोशिश करेगा, कुछ कुछ आ भी जाएगा। और संतुलन में आने के बाद जो आपने प्रश्न पूछा है कि मुझे क्या करना चाहिए, या मैं ये करने की सोच रहा हूं तो क्या इसके सिवाय भी कोई दूसरा करने का तरीका है, दूसरा कुछ है जो किया जा सके, तो आप देखेंगे कि आपको वह उत्तर देगा। और हो सकता है कि वह उत्तर वही हो जो आपने सोच रखा है। मैं नहीं कह रहा हूं कि वो बिल्कुल भिन्न उत्तर देगा, शुरू में ही आप गलत सोच रहे थे, नॉट एट ऑल। हो सकता है कि आप इतने मैच्योर हो चुके हैं, अनुभवी हो चुके हैं कि अब आप तुरंत भी जो सोचते हैं वो सही सोचते हैं। लेकिन हमारी आदत में ये हो जानी चाहिए कि नहीं, हम भले ही सही ही सोच रहे हैं लेकिन थोड़ा सा रुकें। इससे आपके अंदर का बैलेंस धीरे धीरे आना शुरू हो जाता है। फ्रेंड्स अब दो तीन चीजें मैं थोड़ा सा आपसे बहुत ही व्यावहारिक पक्ष की बात करना चाहूंगा। ये तो मैंने वैचारिक पक्ष की बात की है, चेतना की बात की है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब यूं मान करके चलिए कि आंतरिक संतुलन का लगभग 75% जो काम करता है वो हमारी चेतना करती है। 75%, हो सकता है कि 80% भी हो, लेकिन 75% से तो कम नहीं ही है, क्योंकि विचारों से ही हमारे ग्लैंड्स से स्राव होते हैं और उससे हमारा पूरा जो फिजियोलॉजी, पूरा जो शरीर तंत्र है वो प्रभावित होता है। और जब शरीर तंत्र प्रभावित होता है तो उसका असर फिर हमारे विचारों पर भी पड़ता है। मतलब पहले विचार शरीर को प्रभावित करता है करते हैं और फिर हमारा शरीर हमारे विचारों को भी प्रभावित करता है। ठीक वैसे जैसे कि एक बीमार आदमी आपको खुश नहीं दिखेगा, तो आप है तो शरीर बीमार लेकिन उसके विचार सब निगेटिव हो गए हैं, देखते हैं ना आप। तो ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। मैं दो तीन पॉइंट्स आपको कुछ और देना चाहूंगा जिनका संबंध कहीं विचारों से भी है तो कहीं शरीर से भी है। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि हालांकि से आप फिलॉसफी की बात कह सकते हैं, धर्म की बात कह सकते हैं, गौतम बुद्ध के विचारों की कार्बन कॉपी कह सकते हैं, और वो ये है कि हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमारे जो डिजायर्स हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, उन पर थोड़ा हम नियंत्रण रखें और दुनिया को अपने स्वार्थ की निगाह से देखना बंद करें। होता क्या है कि जब इच्छाओं की प्रबलता होती है, लगातार इच्छाएं ढेर सारी इच्छाएं, तो आप देखेंगे वो इच्छा आपको अंदर से विचलित कर देगी, अंदर से आपको इम्बैलेंस कर देगी। ये चाहिए, वो चाहिए, फलाना चाहिए, फलाना चाहिए, ऐसा व्यक्ति कभी बैलेंस में रह ही नहीं सकता। मैं इच्छाओं को खत्म करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन्हें कम करने की बात कर रहा हूं, न्यूनतम तक लाने की बात कर रहा हूं। और सच पूछे तो जो हमारी जिंदगी में देखिए मुख्य प्राथमिक इच्छाएं होनी चाहिए। दो चार प्राथमिक इच्छाएं हैं और बस उसको लेकर के हम काम कर रहे हैं, और बाकी चीजें तो जीवन के लिए जो जरूरी है वो ऑटोमेटिक होती रहती है, उसके लिए इच्छा पालने की जरूरत नहीं होती है। अब खाना चाहिए ये कोई इच्छा नहीं है, पानी पीने का मन कर रहा है इसे मैं इच्छा नहीं मानता, सोने का मन कर रहा है तो ये सोने की इच्छा, नो, ये तो नैसर्गिक चीजें हैं, ये प्राकृतिक चीजें हैं, ये इच्छाएं नहीं है। इच्छाएं वह मैं उन्हें मानता हूं फ्रेंड्स जिनके माध्यम से आप कुछ अतिरिक्त हासिल करना चाह रहे हैं। अस्तित्व की रक्षा के लिए जो अनिवार्य है वह इच्छाएं नहीं है, वो तो जीवन के अभिन्न अंग है। हाँ, आप जो अतिरिक्त प्राप्त करना चाह रहे हैं उस चाहना को इच्छा कहा जाता है। तो एक समय में, एक पर्टिकुलर टाइम में, चाहे वह टाइम एक दिन का हो, चाहे वह टाइम एक साल का हो, या पंचवर्षीय आपकी योजना हो, दशक की योजना हो, उसमें आपकी एक दो महत्वपूर्ण इच्छाएं होनी चाहिए कि मुझे सिविल सर्विस एग्जाम क्वालिफाई करना है। ये आपकी प्राथमिक इच्छा है। इसके लिए आपने 5 साल का प्लान बनाया है, 3 साल का बनाया, 1 साल का बनाया है, तो वो आपकी ड्यूरेशन ऑफ प्लानिंग हो गई। अब कम से कम इस ड्यूरेशन में अब आप इच्छाओं के इच्छाओं इच्छाओं के इच्छाओं के ऊपर इच्छाएं मत लादते जाइए कि आपको सिविल सर्विस का एग्जाम भी क्वालिफाई करना है, लेकिन आपको दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा मस्ती भी करनी है, आपको हिंदुस्तान का भ्रमण भी करना है, आपको पार्टियां भी करनी है, यानी कि समय उधर भी लगाना है और समय इधर भी लगाना है। तो जो कंट्राडिक्टरी जो इच्छाएं होती हैं, एक दूसरे के विरोध में जो खड़ी हुई इच्छाएं होती हैं, ये हमें डैमेज कर देती हैं, खत्म कर देती हैं और धीरे धीरे हम असंतुलन की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो मित्रों ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि दिमाग पर ज्यादा बोझ मत रखिए। दिमाग पर बोझ की यहां मैं जो बात कह रहा हूं वो ये कि जो काम आपको लगता है ना कि हम अभी कर लेंगे, उसको कर डालिए, अभी कर डालिए अगर वो कर सकते हैं तो। ज्यादा टालिए मत। टाल आप काम को तो टाल देते हैं, लेकिन याद रखिए कि आपका दिमाग उस काम को नहीं टाल पाता है और वो दिमाग उस बोझ को ढोए रहता है। जब भी उसको याद आ जाएगी वो बात, दिमाग भारी हो जाएगा, विचलित हो जाएगा, आपने महसूस किया होगा। तो उस क्षण तो आप असंतुलित हो गए। मान लीजिए कि आप पढ़ाई ही कर रहे हैं, आप ड्राइविंग कर रहे हैं और उसी समय आपको अचानक वो बात याद आ गई, तो आप देखेंगे कि क्षण भर के लिए आपका ध्यान भंग हो जाएगा, पढ़ाई का तारतम्य टूट जाएगा, ड्राइविंग में भी थोड़ी सी स्टीयरिंग हिल जाएगा थोड़ा सा, तो बड़ी बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है। तो अगर आपको लगता है कि यार इसको निपटाया जा सकता है, अभी किया जा सकता है, तो करके मुक्ति पा लें। और अंत में मैं पॉइंट जो आपके सामने रखना चाहूंगा फ्रेंड्स, वो ये है कि देखिए कि आप अपने दैनिक जीवन को कितना अधिक प्रकृति के अनुकूल बना पाते हैं। क्योंकि जब हमारा जीवन प्रकृति के अनुकूल होता है तो ये मान करके चलिए कि अब अनुकूलतम तो होना चाहिए ना। अगर दूसरे का वेवलेंथ जब तक सेम नहीं होगी तब तक तो बात बनती नहीं है साइंस में। तो अगर आप प्रकृति के अनुकूल अपने को बना लेते हैं अपने जीवन को, तो सीधी सी बात है कि प्रकृति के वेवलेंथ से आपकी वेवलेंथ मिल गई, और अगर वो वेवलेंथ मिल गई तो इसका मतलब है कि प्रकृति की शक्ति भी आपको अब मिल सकती है। तो मैं कोई किसी अलौकिक शक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो बहुत ही सामान्य किस्म की दैनिक जीवन की शक्ति की बात कर रहा हूं। आप प्रकृति के जितने अनुकूल रहेंगे आपकी ऊर्जा उतनी ज्यादा आपको उतनी ज्यादा मिलेगी, आपका स्वास्थ्य उतना अच्छा रहेगा और मन भी सच मानिए कि उतना ही प्रसन्न रहेगा। तो इस तरीके से आपका जीवन एक अलग ही तरह की ऊर्जा और प्रसन्नता से भर जाएगा, बट नेचुरली कि उसका प्रभाव आपके आंतरिक संतुलन पर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो मित्रों ये मैंने कुछ बातें आप लोगों से शेयर की हैं और मैं समझता हूं कि काफी लंबा ये विषय खिंच गया। मुझे खुद भी उम्मीद नहीं थी कि यह विषय इतना लंबा जाएगा, लेकिन शुरू में जो आप लोगों की प्रतिक्रियाएं मिली उसने मेरे मन को उत्तेजित किया और कुछ नई तरह से सोचने को विवश भी किया। तो इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरे अंदर एक विचारों की आप लोगों ने उत्तेजना पैदा की। तो मित्रों इसी के साथ ही अब बैलेंस इन लाइफ विषय को यहीं अब समाप्त करते हैं। कल से फिर कोई नया विषय लेकर आगे बातें करेंगे। अब तब तक के लिए मैं इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।